तो हम आज पांचवा स्कंद 18वां अध्याय और 37वां श्लोक पढ़ रहे हैं। द्रव्य क्रिया हेतु एन ईश कृत्र भी माया गुणे वस्तु निरीक्ष आत्मने अन्वीक्षा अंग अतिशया आत्मबुद्धि भी निरस्त माया आकृते नमः नमः। द्रव्य इंद्रिय सुख के पदार्थों द्वारा क्रिया इंद्रियों का व्यापार हेतु इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता अयन शरीर ईश प्रबल काल कृतिर भी झूठे अहंकार से माया गुणे भौतिक प्रति के गुणों द्वारा वस्तु तथा स्वरूप निरीक्ष निरीक्षण किया जाकर आत्म ने परमात्मा को अनविक्षया अत्यंत विचार करके अंग योग साधना के अंगों द्वारा अतिशय आत्मबुद्धि भी जिनकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है उनके द्वारा निरस्त पूर्णतया मुक्त माया आकृत्याय जिनकी आकृति रूप नमो नमस्कार नमः नमस्कार है। ट्रांसलेशन एंड तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। भौतिक सुख के साधन शब्द गंध रूप स्पर्श स्वाद इंद्रिय कर्म इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता शरीर अनंत काल तथा अहंकार ये सभी आपकी माया से उत्पन्न हैं। जिन्होंने योग के द्वारा अपनी बुद्धि को स्थिर कर लिया है वे सब देख सकते हैं कि ये सभी तत्व आपकी माया के ही परिणाम हैं। वे आपके दिव्य रूप को भी प्रत्येक वस्तु की पृष्ठभूमि में परम आत्मा के रूप में देख सकते हैं। अतः मैं पुनः पुनः आपको नमस्कार करता हूं। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा भौतिक सुख के साधन मानसिक क्रियाएं इंद्रिया सुख के प्रति लगाव शरीर मिथ्या अहंकार इत्यादि सभी भगवान की माया से उत्पन्न हैं। इन सब कार्यों का आधार जीवात्मा है और जीवात्माओं के संचालक हैं परमात्मा। जीव सर्वे सर्वा नहीं होता वह परमात्मा द्वारा निर्देशित होता है। भगवद गीता 15:15 में श्री कृष्ण इसकी पुष्टि करते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सुनिष्ठो मते स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। मैं सब प्राणियों के हृदय में स्थित हूं और मुझसे ही स्मृति ज्ञान और विस्मृति होती है। जीव निर्देशों के लिए परमात्मा पर निर्भर करता है। आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त व्यक्ति अथवा योग क्रिया यम नियम स्नादि से में पटु व्यक्ति ही शब्द को सत्व को परमात्मा या श्री कृष्ण के रूप में जान सकता है। परमेश्वर भी सभी प्राकृतिक घटनाओं के मूल कारण है अतः उन्हें सर्व कारण कारणम सभी कारणों का कारण बताया गया है। हमें जो कुछ भी दिखाई देता है उसका कुछ ना कुछ कारण है और जो कोई समस्त कारणों के मूल कारण श्री कृष्ण को देख सकता है वही वास्तव में देख सकता है। सच्चिदानंद विग्रह श्री कृष्ण के प्रत्येक वस्तु की पृष्ठभूमि में है क्योंकि भगवद गीता में वे स्वयं इसकी पुष्टि करते हैं। मैं दक्षिण प्रकृति सूते से चराचरम हेतु नाने न कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। हे कुंती पुत्र यह अपरा प्रकृति माया मेरे अध्यक्षता में कार्य करती है और यह संपूर्ण चराचर प्राणियों को रचती है। इसी कारण इस जगत का बारंबार सृजन और संहार होता है। ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानांजन शलाका चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्ना मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपदां दातिथपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारने। जय श्री कृष्ण चैतन्ना प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत नरम चरम रोत्तम देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयं दीरेत। वांछा कल्पत्र विष्कृपा सिंधु वे विचपति नाम पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद गिरिराज स्वामिनिति नाम्ने। तो यहाँ पर इस श्लोक में बताते हैं कि इंद्रियों के जितने भी सुख हैं, शब्द गंध रूप स्पर्श, और उनको बनाने वाले जो देवी देवता हैं, जो सब हमारी इच्छाओं को पूरी करते हैं, जो भी इच्छाएं हैं, और जो भी काल है अहंकार है, सब कुछ ये भौतिक जो भौतिक शक्ति है। भगवान की दो शक्तियां, बहिरंगा और दूसरी अध्यात्म शक्ति। जीव का संबंध कृष्ण से है। इच्छा द्वेष द्वंद्व मोहिना भारत, कृष्ण गीता में कहते हैं कि इच्छा द्वेष के कारण ये जो भौतिक प्रकृति है, मटेरियल नेचर दुर्गा, वो सब कुछ ये संसार को, भौतिक जगत को वो चलाती है। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते हैं कि जो भगवान की शक्ति है, जो अध्यात्म में, जो वैकुंठ में, उसका नाम है सुभद्र, भद्र। मगर जो भद्र है वो सुभद्र, और वही जो सुभद्र, जो वैकुंठ में सुभद्र है, वो भौतिक जगत में भद्र काली बनती है, दुर्गा। मैं अदक्षेण प्रकृति सूते से चरा चरा, और ये जो प्रकृति है, भौतिक प्रकृति, वो सब कुछ, जो भी कुछ हमारी, जो भी कुछ इच्छाएं हैं, ये सब कुछ जो भी देख रहे हैं, सब प्रकृति चला रहे हैं। परंतु गीता में इसकी पुष्टि करते कृष्ण कहते हैं कि जो प्रकृति है ये मेरे से भिन्न नहीं, और ये मेरे स्वतंत्र नहीं है। कोई ये नहीं कहे कि जैसे भगवान हैं उसी के बराबर ये प्रकृति हो जाएगी, ना। उन्होंने बोला मैं अदक्षिणा, ये जो प्रकृति है मेरे अंडर काम करती है। और कैसी है यह प्रकृति, इसको कोई पार नहीं पा सकता। दैवी है शा गुण में मम माया द्रुत्या है, ये इतनी कठोर है कि इसको कोई पार नहीं पा सकता, केवल एक ही व्यक्ति पा सकता है। सब संसार धर्म अर्थ काम मोक्ष में फंसा हुआ है, इच्छा है, इच्छा द्वेष के कारण यहां जन्म लिया भौतिक संसार में। और भौतिक संसार में आता है तो यहां तो धर्म में या अर्थ में और काम में और मोक्ष में, यही तो सबकी गोल है, यही सब पाना चाहते हैं। आप देखिए, कोई अच्छा से अच्छा काम करता है, कोई परिवार को पालता है, कोई देश को पालता है, मैं देश का धर्म कर रहा हूँ, या मैं परिवार को पालने का धर्म कर रहा हूँ, सोसाइटी को एक धर्म है, ड्यूटी, किसी ना किसी को, किसी ना किसी के प्रति वो अपना धर्म का याजन कर रहा है व्यक्ति। अर्थ, धन के बगैर कुछ चलता नहीं, अर्थ तो चाहिए। सब संसार उसमें फंसा हुआ है, मनुष्य जीवन में आता है उसमें फंस गया आगे। अर्थ और काम और भोग, कुछ भी छोटी से छोटी भी चीज मिले तो उसको भोग करता है। एक चिड़िया है, उसको छोटी सी चिड़िया या पशु या पक्षी या कुत्ता, आप देखते सुअर, गंदगी भी मिलती उसको भोग करता है। और वही मनुष्य की हालत, छोटा है तो भी भोग करता है, ज्यादा है तो भी भोग करता है, भोग के पीछे भागता है। और भोग के भागते भागते जब कुछ सुख नहीं मिलता तो बोलता है मेरे को मोक्ष चाहिए, ठाकुर नहीं चाहिए, उसको पता ही नहीं है ठाकुर का। सर्वस्य चाहम हृदय स्मृष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, प्रभुपाद ने इसी तात्पर्य में बोला सर्वस्व जहां मैं सबके हृदय में हूं और मैं ही उनकी विस्मृति करवाता हूं, मैं ही उनको ज्ञान देता हूं, मैं उनको भुलाता हूं। कई बार लोग बोलते हैं अरे मैंने तो कोई बुरा नहीं किया ये जन्म में, और मेरे को तो दुख बहुत मिल रहे हैं, मैंने क्या किया? पिछले जन्म में किया होगा, तो पिछले जन्म में किया तो भगवान तो बुलाते हैं, हमको याद नहीं है। कभी हमको याद रह जाए, पिछले जन्म की स्मृति रह जाए, बहुत कष्ट होता है। कभी आप देखेंगे, कभी यहां पर कहीं भी संसार में होता है, अमेरिका में भी आजकल देखते, मीडिया बोलता है कि इंडिया में ये हुआ, इंडिया में बलात्कार हुआ, ये सब जगह चलता है, अमेरिका में भी चलता है, अमेरिका में रेशो इससे भी ज्यादा है। ये कलयुग का प्रभाव है। तो जो बच्चा, जो औरत इस बुरे एक्सपीरियंस से कैसे, वो उसको कैसे, उसको दुखी मन होता होगा। कुछ राक्षस किसी को दुखी करे तो कैसे वो भूलना चाहता है व्यक्ति, या कोई भी किसी तरह का भी दुख, कोई भी दुख आता तो बड़ा ही होता है। किसी का पांव टूट जाए बोलता है इससे बड़ा दुख कोई नहीं था। कोई परिवार का दुख, कोई बच्चों का दुख, कोई सेहत का दुख, कोई धन का दुख, कि अलग अलग तरह के दुखों से दुखी होता है। और जब व्यक्ति को जिसको पता उसी का दुख बड़ा हो जाता है, और दुखों से निवृत्ति अब भगवान उसको भुलाते हैं। और कभी किसी के पास बहुत कुछ हो और ये जन्म में उसके पास नहीं हो तो वो अपने उसको देख देख कर दुखी होता है। जैसे होता है ना, किसी के पास लोग क्या करते हैं, दूसरे का सुख होता है, अरे बोलते उसमें दुखी होता है व्यक्ति, अरे उसके पास ऐसा क्यों हो गया, वो तो बहुत सुखी है, उसका सुख देखकर दुखी होता है। और दुख होता है, अच्छा बढ़ गया हुआ, ये आदमी ऐसा था, इसको चाहिए ऐसा था, उसका दुख देखकर अब सुखी होता है। अब दुख सुख के चक्कर में चलते चलते मोक्ष की प्राप्ति के लिए भागता है व्यक्ति। बोले भैया कहां भी भाग लो, जब तक कृष्ण की शरणागति में नहीं जाओगे तब तक सुख नहीं मिलता, क्योंकि जीव का संबंध कृष्ण से है। सर्वस्व चाहम हृदय स्पृष्ट, भगवान बुलाते हैं, अहम सर्वस्व प्रभवो, अहम बीज प्रदो पिता, मैं पिता हूं सबका। कहीं भगवान ने नहीं कहा कि केवल मैं हिंदुओं के लिए हूं या मैं मनुष्य के लिए हूं, जीव आत्मा के लिए बात करते हैं कृष्ण, प्रत्येक जीव के लिए करते हैं, मगर जीव की बात है मैं नहीं मानूंगा। प्रभुपाद जी कहते थे, जब हम अमेरिका में, प्रभुपाद जी ने बोलते थे लोग को चांट चांट चांट, तो प्रभुपाद बोलते हैं लोग कहते हैं कांट कांट कांट, कांट भी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। जीव का संबंध भगवान कृष्ण चाहते हैं कि हर एक जीव प्रसन्नमय हो, क्योंकि कृष्ण आनंदमय है, उनके जीव भी आनंदमय होने चाहिए। और उसके लीलाएं, उसको लीलाओं करके, लीला करके नहीं, तो कृष्ण को कोई जरूरत नहीं है यहां पर भौतिक संसार में लीला रचाने की। वो तो आनंद में बैठे हैं अपने आनंद से, वैकुंठ धाम में, मगर फिर भी भौतिक जगत में एक लीला चलाते रहते हैं। अभी इस समय किसी और ब्रह्मांड में, भौतिक जगत के अंदर अभी भी कृष्ण की लीला चल रही है। कहीं पर कृष्ण खेल रहे हैं, कहीं पर कृष्ण मार रहे हैं, कहीं पर कृष्ण कुछ करते हैं। कृष्ण नहीं मारते, उनका विष्णु रूप मारता है। वृंदावन में कभी कृष्ण, कृष्ण तो आनंद में गोप-गोप के साथ आनंद से खेलते हैं, उनका जो विष्णु रूप है वही मारता है, कृष्ण आनंद में लीलाएं कर करके दिखाते हैं ताकि जीव किसी ना किसी तरह उनके पास चला जाए। आप गर्ग संहिता में पढ़िए, वहां पर भगवान कृष्ण के गर्ग मुनि जी ने जो प्रसंग दिए हैं गोपियों के बारे में, गोप के बारे में, वृंदावन के विषय में, तो वहां पर कहते हैं कि जैसे श्रुतियां आई और श्रुतियों ने सब वेद की, जो वेद शास्त्र, वेदों की श्रुतियां आई और भगवान को प्रार्थना करती हैं, अरे भगवान को देखता रूप देखती हैं, अरे आ हमारा भी ऐसा हो कि हम भी वृंदावन में आए, आपकी गोपियां बने। हे भगवान, हम कैसे आपकी सेवा में लगे, कब आप हमको भोगिए। हमारा मन करता है कि आप हमको भोगिए, हम आपके आपके आपकी सेवा करना चाहते हैं, आप किसी तरह भोगिए। ठाकुर कहते कोई बात नहीं, जब वृंदावन की लीला में करता हूं तो वृंदावन में लीला में आप गोपियां बन जाना। श्रुतियां बहुत प्रसन्न हो गई, अब राम अवतार लिया और वहाँ पर जब उधर जनक महाराज के पास पहुँचे, कौन थे उनके, मेरे को नाम भूल गया, जो ऋषि थे साथ में लेके गए, हाँ विश्वामित्र, हाँ विश्वामित्र मुनि लेके गए, भाई ओ मारना है, जनक जी के पास आए, दशरथ जी के पास आए, अरे महाराज ऐसे ऐसे राक्षस हैं, मेरे को तो आपके दो दोनों बच्चे चाहिए, दे दो। अरे नहीं मैं चलता हूँ, मैं राजा हूँ, इतनी सेना है, मैं चलता हूँ, ये तो अभी छोटे छोटे बच्चे हैं अभी तो, ना ना, उनको पता था कौन है ये। विश्वामित्र मुनि बोलते ना मेरे को तो यही चाहिए दोनों भाई। अरे रो रहा है दशरथ, भाव है, ये है भक्त का, रो रहा है कि तुम, अरे विश्वामित्र मुनि आप इनको मत लेके, अरे नहीं तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। विश्वामित्र मुनि पुराने राजा होते थे तो ब्राह्मणों से ऋषि मुनि से आज्ञा लेते थे कि कैसे राज चलाया जाए, दिमाग दिमाग से काम, क्योंकि ये बुद्धि है और क्षत्रिय बल है। अच्छा भेज दिया, अब भेज दिया, वो ताड़का मारी, ताड़का थी ना पहली वाली, ताड़का ताड़का की मारी और बाद में चले गए जनकपुरी। अब जहां पर गए तो वहां पर दिखाते उनको, उससे पहले अहल्या का उन्होंने उधार कर दिया, जब वहां पर गए तो वहां पर जो वहां की जो लड़कियां थी, औरतें थी, जब उन्होंने देखा स्त्रियों ने, अरे इतने सुंदर, अरे वाह, राम को देखते ही उनका मन में ये आ गया, कभी प्रभु ऐसा हमको मिल जाए तो उससे क्या कहना है, ये हमको पति चाहिए। और राम मुस्कुराते मन में, राम मुस्कुराते हैं सीता के साथ, वो तो अर्धांग नहीं है उनकी, नहीं ये जन्म में नहीं, जब मैं कृष्ण के रूप में हूं तब तुम गोपियां बनना, उनको दे दिया गोपियों का वर, तुम आना। दंडक ऋषि दंडक वन में जाते हैं और दंडक वन में गए, वहां पर हर एक जगह पर जब दंडक वन में एंटर किए तो तभी ऋषि मुनि जो हजारों हजारों साल तपस्या कर रहे थे, कि किसके ऊपर तपस्या करते, कृष्ण के ऊपर, स्पष्ट लिखा गया कृष्ण के ऊपर, क्योंकि कृष्ण के पास वो लाठी है और बंसी है, और जब देखते हैं अरे हमारा तो, हम तो जब अपना भजन कर रहे हैं इतने सालों से, ये जो बात है रामायण, अब ये युग के, ये चतुर्युग के अंदर 20 लाख साल पहले, और भगवान कृष्ण ने जो यहाँ पर जो प्रकट लीला हुई, प्रकट नंदा प्रकट, ये तो चलती रहती लीला, अभी अप्रकट है मगर प्रकट, मगर आज भी जिसको नाम सिद्ध हो जाता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसको यहाँ पर ये बिल्डिंगें दिखाई नहीं देती, नाम प्रकाश सर्वस्व योग माया स्मावता, ये तो योग माया के साथ कवर है। कोई बोलता है अरे बिल्ड, ये तो वृंदावन खराब हो गया, अरे भैया वृंदावन कभी खराब नहीं होता, ये वृंदावन है, ठाकुर का धाम है, ये तो योग माया का, जब आप सिद्ध कर लेते हो नाम तब आपको दिखाई देती सब लीला दिखाई देगी और देती है, कोई शंका नहीं है इसके अंदर। और जब वहां पर गए तो दंडक वन में जब देखा उन्होंने, अरे ये तो हमारे, अरे किधर बंसी होती है, ये तो हाथ में धनुष बाण ले लिया इन्होंने, और वो सोचते हैं, और जब सीता सेवा करती है उनकी तो देखती है, देख अरे ऐसा अवसर होता, हमारा भी भाग्य होता, हम भी राम की पत्नियां बनती और इनकी सेवा करती, और मंद मंद मुस्काते हैं भगवान अपने मन में, कोई बात नहीं इच्छा पूरी हो जाएगी, वृंदावन में करूंगा। अच्छा सब कुछ करते आगे चलते हैं, पंचवटी में भी वहां पर जब ऋषियों ने देखा, उन्होंने देखा अरे हमारी इच्छा होती तो हम भी आपकी सखियां बनते, हम भी आपकी पत्नियां बनते, कोई नहीं वृंदावन में, अब जो आए उसको वृंदावन में, जो सामने आए वृंदावन में करूंगा आपकी इच्छा पूरी, यहां नहीं करूंगा। अब करते करते जब राम ने सीता को त्याग भी दिया, राम सीता को कभी नहीं त्यागते, सुपरफिशियली जब ऐसा किया भी तो हर बार यज्ञ करते थे तो यज्ञ के लिए एक नमी नई मूर्ति, उनकी एक नई मूर्ति बनाते थे सीता की सोने की, और हर बार तब यज्ञ चलता था। जैसे आजकल है कृतयत ध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजुतो मुखे तो आप्रे प्रचायम करो तद हरि की, इतना चार युग हैं, चार मेथड हैं भगवान की प्राप्ति के। कृतयत ध्याय तो विष्णु, सतयुग में विष्णु का ध्यान करते थे लोग, ये आजकल की तरह नहीं है। कोई लाइट की तरफ देखता है, कोई कुछ को देखता है, कोई अपने गुरु को देखता है, कोई किसी को देखता है, और लोग तो भटके पड़े हैं। अरे कृतयत ध्याय तो विष्णु, ध्यान लगाना है तो केवल विष्णु का। आजकल तो पता नहीं क्या क्या बना दिए हैं, मंत्र बना दिए हैं, शंतर बना दिए, कहीं कुछ बन गया है। कृतयत ध्याय तो विष्णु, विष्णु का ध्यान। त्रेतायाम यजुतो मुखे, त्रेता में यज्ञ से भगवान, यज्ञ पुरुष भगवान प्रकट हो जाते थे। और राम मर्यादा है, मर्यादा दिखा रहे हैं मनुष्य जीवन में कैसे रहना है, तो वो भी यज्ञ करते थे। अब यज्ञ करिया किया, कोई भी यज्ञ किया, हर बार नई प्रतिमा बनाई, नई मूर्ति बनाई सीता की सोने की, और उसके साथ यज्ञ किया। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्नाथ नाम नामिनो। कृष्ण का नाम, कृष्ण की मूर्ति भिन्न नहीं है, कृष्ण की पुस्तक, कृष्ण का विषय वो कृष्ण ही है। जब हम नाम लेते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, वो ये नहीं है कि कृष्ण हजारों करोड़ों अरबों मील दूर बैठे हुए हैं, हम यहाँ पर बैठे हैं, कृष्ण दूर है, एक दिन मैं कृष्ण के पास जाऊंगा। अरे कृष्ण के पास हो, कई बार लोग बोलते हैं मेरे वो कृष्ण के पास जाना है, भैया कृष्ण के पास जाना नहीं है, इधर आभास नहीं है, कृष्ण साथ में है। हर बार कृष्ण का नाम जपो तो कृष्ण साथ में। तो भगवान की मूर्ति यहां पर जो कृष्ण बलराम है, क्या ये कोई स्टैचू है? नहीं, कृष्ण बलराम साक्षात यहां पर है। प्रभुपाद जी ने बहुत, मैं अभी राम की बात अभी बतलाता हूं आपकी, तो प्रभुपाद ने यहां पर जब कृष्ण बलराम को स्थापित किया तो ये इसका एक कारण है। यही तो कृष्ण गौचारण करते थे ना, यही तो कृष्ण राजभोग करते हैं, यही कृष्ण बैठकर गोपों के साथ बैठकर गंगा गवें चल रही हैं, यमुना जी के किनारे पर बैठकर भोग लगाते हैं, और वही सब कुछ कृष्ण व्यक्ति को। जब इसीलिए प्रभुपाद ने यहाँ पर कृष्ण बलराम को स्थापित किया। राधा 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 श्याम जी यहाँ पर है, प्रभुपाद ने एक बात बोली कि राधा श्याम, वो तो राधा श्याम सुंदर राधा कृष्ण अपनी अलग लीलाएं करते, ये जगह के ऊपर कृष्ण बलराम को स्थापित करते हैं। ये मूर्तियां नहीं है, ये साक्षात कृष्ण बैठे हैं। और वो जितनी भी यज्ञ के लिए सोने की मूर्तियां बनाई थी राम जी की, अब हर बार यज्ञ हुआ एक मूर्ति बनाई तो मूर्ति को स्टोर में रख दिया, दूसरी बनाई, तीसरी बनाई, तो सब कितनी हजार वहां पर मूर्तियां पड़ी हुई हैं सीता की। तो एक दिन सब मूर्तियां आ गई राम के पास, अरे प्रभु हम तो आपकी पत्नी आए, हमको तो भोगो ना, ये जन्म में नहीं भोगूंगा, वृंदावन में भोगूंगा तुमको, ये वृंदावन का आसन है। तो सब वो गोपियां जो जितनी भी थी, सब जो मूर्तियां थी राम जी की, सब ने गोपियों का जन्म लिया, और यहां पर भगवान कृष्ण उन गोपाओं के साथ, गोपियों के साथ यहां पर लीला करते हैं। और ये लीला स्मरण करने से भगवान कृष्ण के प्रति व्यक्ति को आकर्षण हो जाता है, और ये कोई साधारण बात है ही नहीं, लोग इसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते। यह असमोहितो जीवन आत्मा त्रिगुणात्मक, तीन गुणों के अंदर जीव फंसा हुआ है, वो इस बात को नहीं समझ सकता। अरे यहां तक जो आप देखे ब्रह्मा जी है जिन्होंने ये सृष्टि रचाई है, हम देखते हैं, हम तो इतने, वो कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। यहां पर आप देखिए कुछ भी छोटी छोटी बातें देखो, अभी थोड़ी सी कुछ किसी को खांसी आ जाए उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, मलमूत्र आ जाए उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, छोटी छोटी बातें, भूख को तो थोड़ा बहुत एक दो दिन के लिए कर लेगा, फिर भी उसको खाना ही पड़ेगा, पानी तो पीना ही पड़ेगा, फोर्स है। इसीलिए जीव को बद्ध जीव है, जीव स्वतंत्र नहीं है, सोचता है कि मैं स्वतंत्र हूं, अपने जीव आत्मा को अपने शरीर को वो सोचता है मैं स्वतंत्र हूं, और स्वतंत्र रहना चाहता है। कोई बच्चा बोलता है कि मैं अपने माँ बाप से स्वतंत्र रहूंगा तो मैं खुश रहूंगा, कई बार आजकल कलयुग है, कलयुग के बच्चे कई खराब हैं, अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, वो सोचते कि मैं निकलूँ तो स्वतंत्र हो जाऊँ। यहाँ पर मैंने देखा है, यहाँ पर एक फैमिली आई, यही बाहर ये सामने कौन सा आश्रम है, वो जो कॉम्प्लेक्स है स्कूल के सामने, केशव कुंज, उधर रहता था, याद नाम याद भूल गया अच्छा है भूल जाए तो, ये चीज़ें भौतिक चीज़ें हैं, ये जीवन से भूलना ही अच्छी है। वहाँ पर मैंने अपने सामने देखा एक बड़ी सी गाड़ी आती है 4x4, कोई इनोवा पता नहीं कौन सी थी, उसमें खचाखच भरी पड़ी है, उसमें 5-6 आदमी हैं, वहाँ से एक बुढ़ी सी औरत को निकालते हैं और छोड़कर गाड़ी चला के भाग जाते हैं, माँ को ड्रॉप करके चले गए। और यहाँ पर एक भक्त है, उसने उसको पकड़ा, पूछा तो रो रही है। अब उसको बेचारी को, बुढ़ी को ना पता है कौन है, ना उसका फोन नंबर पता, ना कहाँ रहती, वृद्ध हो जाता है कई बार व्यक्ति, तो ऐसे ऐसे लोग पटक के चले जाते हैं। ये दुख है संसार का। तो भगवान कृष्ण की जब सब गोपियां भगवान कृष्ण आकर्षित कर, किसी ना किसी तरह जीव आ जाए, और कृष्ण के पास पहुंचना बहुत मुश्किल है, जीव को पता ही नहीं है। बड़े बड़े आज देखते हैं, आजकल बड़े बड़े गुरु बने पड़े हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं बनी पड़ी हैं, मगर किसी को ठाकुर के बारे में तो पता ही नहीं है, बात ही नहीं करते। लोगों को बुलाते हैं, किसकी पूजा करो, बस गुरु की पूजा करते रहो, उसको उसका सब कुछ करते हैं। एक बार प्रभुपाद जी ने पूछा डिवोटीज ने, बॉम्बे में, मैं नाम नहीं लूंगा, एक संस्था थी, उस संस्था में सब कुछ करते हैं जो हम ठाकुर के लिए करते हैं, हम ठाकुर को भोग लगाते हैं, हम भगवान को आरती करते हैं, व्रत करते हैं, अब वो भी वो कर रहे हैं, वो लोग भी, नाम नहीं लूंगा, प्रभुपाद जी के पास डिवोटीज गए बॉम्बे में, प्रभुपाद हम भगवान के लिए व्रत करते हैं, हम सुबह उठते हैं, हम आरती करते हैं, भगवान को भगवान का भोग लगाना, श्रृंगार करना, सब कुछ करते हैं, वो भी यही करते हैं, क्या उनको भी वही गति प्राप्त होगी? प्रभुपाद बोलते ना, यम यम वापी स्मद भावम तजंते कलेवरम तम तम अवेति कौनते आसदा तत् तत् भाव भावित न। मरते हुए उसने उस व्यक्ति का सोच लिया, जहां पर वो व्यक्ति नरक में बैठा होगा तो ये सब उसके जितने भी लोग हैं नरक में जाएंगे। जैसे देखते हैं ना आप, अभी कैमरे में है जो मैं बोल रहा हूँ वो रिकॉर्ड होता जा रहा है, अब स्टिल कैमरा होगा, कभी मैं हंस रहा हूँ तो क्लिक होगा तो हंसते हुए की फोटो आ जाएगी, और व्यक्ति रो रहा है तो क्लिक होगा तो रोते ही व्यक्ति की फोटो आएगी। जैसी आपकी शक्ल है, कभी बहुत खूबसूरत है तो फोटो खूबसूरत आएगी, आपकी कभी शक्ल खराब है तो फोटो भी खराब आएगी। और अंतकाल मन जो अंतकाल के अंदर यम यम वापी स्मरण भावम, मरते हुए जैसी ही आपकी अवस्था होगी मरते हुए, वैसा ही योनि आपको मिलेगी, उसमें कोई संशय नहीं। एक बार एक, पता नहीं मैं कभी पहले कभी ये कहानी बताई कि नहीं आपको, एक बार एक अजगर था, उसको हजारों कीड़ियां और चींटियां उसको खा रही हैं, और एक वैष्णव साधु गया, साथ में उसके शिष्य थे, तो अजगर की तरफ देखा, वो हंस पड़ा, मुस्का दिया थोड़ा सा, और शिष्य के मन में शंका आ गई, अरे महाराज साधु को तो सबकी तरफ बहुत दयावान होना चाहिए, मगर आपने उसको सांप को देखा और हंस दिए, नया भक्तों का बेचारा कोई, अभी गुरु को समझा नहीं, वैष्णव गुरु, गुरु अलग वैष्णव गुरु। आजकल ये मैं हमेशा ये अपने किसी भी प्रवचन में जरूर जरूर बुलाता हूँ, वैष्णव गुरु, गुरु नहीं, एवं परंपरा एवं राजस्व विदु, आजकल तो जहां देखो गुरु है, अब देखते हैं ना, गुरु तो चोर का भी होता है, चोरी भी गुरु का बगैर नहीं सीखी जाती, कोई शराब पीता है तो वो भी गुरु सिखाता है, बेटा पी, उसका भी गुरु है वैष्णव गुरु, जो विष्णु की भक्ति बताए, कृष्ण की भक्ति बताए। तो जब वो मुस्कुरा रहा था तो उसका उसने शिष्य की तरफ देखा, बोलता बेटा ये जो अजगर है ये पिछले जन्म में गुरु होता था। अरे महाराज, तो और ये जितनी भी चींटियां लगी हैं ये सब उसके शिष्य थे, ये गुरु भगवान विष्णु की हरेश हमेशा भगवान विष्णु का निरादर करता था, बोलता था कि कृष्ण की पूजा नहीं करनी। आज होता है, आज पंजाब में जाइए, वो बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं गुरु, आपको कृष्ण की पूजा नहीं करनी, आपको गीता नहीं पढ़नी, आपको रामायण नहीं पढ़नी, आपको व्रत नहीं करना, आपको एकादशी नहीं करनी, आपको किसी तीर्थ स्थान पे नहीं जाना, आपको गंगा जल नहीं पीना। क्यों? क्योंकि वो करेगा तो उसका व्यापार नहीं चलेगा। तो वैसा ही गुरु था कोई कलयुगी, इसको मैं उनको कहता हूं कलयुगी गुरु। तो बोला ये विष्णु का निरादर करता था, लोगों को बहकाता था, विष्णु से दूर लेके जाता था। उस अपराध के कारण ये जन्म में वो ये अजगर बना और ये जितने भी चींटियां देख रहे सब उसके फॉलोअर थे। मरते दम उन्होंने अपने गुरु के बारे में सोचा और आज ये चींटियां आज भी उसी को खा रही हैं गुरु को। यम यम वापी सुन भावम तजंते कलेवरम। तो भगवान कृष्ण हमको, हमारा भाग्य इतना अच्छा है, वैष्णव गुरु की प्राप्ति करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस व्यक्ति को ढूंढना जिसने पूर्ण कृष्ण की शरणागति ली हो बहुत कठिन है ना, है कि नहीं? सब माताएं बैठी है ना, बहुत मुश्किल। दुनिया को पता ही नहीं कृष्ण है, और जिसको पता लग जाए, और हमारी इतना भाग्य है कि प्रभुपाद जी ने हमको कृष्ण के विषय में बतला दिया, और हमारा उससे ज्यादा भाग्य यह है कि किसी तरह उन्होंने हमको अपनी तरफ खींच लिया। ये कोई छोटा बात नहीं है, कृष्ण के पास आना कोई छोटी बात नहीं है। और वृंदावन धाम में बुला लेना, वहां पर आपको रहने की व्यवस्था कर देना, ये कोई आसान नहीं। प्रभुपाद ने एक बात बोली है, जो शुद्ध भक्त होता है यहां भी जाता है वृंदावन है। जब प्रभुपाद जी एक शुद्ध भक्त हैं, जहां पर भी गए वहां पर उन्होंने वृंदावन स्थापित कर दिया, वहां पर एक ऐसी व्यवस्था कर दी कि सब लोग वो जब प्रभुपाद थे तो कोई भी, क्योंकि ये वैष्णव का, पूर्ण वैष्णव का लक्षण है, जब भी उन्होंने प्रभुपाद जी को देखा तुरंत प्रभुपाद जी की तरफ आकर्षित हो गए, और जो जो प्रभुपाद जी बोलते थे वो करते थे। प्रभुपाद ने फूटी कौड़ी नहीं दी किसी को। मैंने अपने गुरुजी को पूछा इस बात का, मैंने बोला जब प्रभुपाद थे बोलते नहीं, प्रभुपाद तो हमको किसी को कोई पगार नहीं देते थे, किसी को कुछ नहीं देते थे, सब हर एक व्यक्ति केवल तब सेवा करता था प्रभुपाद जी के प्रति। तो मेरे गुरुजी हंस के बोलते हैं, हिज होलीनेस गिरिराज स्वामी, वो बोलते हैं कि हमको क्या पगार मिली, हम अपने पास जो होते थे वो प्रभुपाद जी को देते थे। जैसे ससुर महाराज थे, देखो ससुरु महाराज जब ये शुरू किया, पहला डोनर ससुरु महाराज थे, जाकर नौकरी करते थे, सारी की सारी कमाई आके प्रभुपाद जी के हाथ में रख देते थे। बहुत कष्ट सही है भक्तों ने इस सोसाइटी को स्थापित करने के लिए, और इतना भाग्य है हमारा। मैं आपको बताता हूं, प्रभुपाद जी ने एक और बात कही है, ठीक है वृंदावन कोई भी मंदिर है, यहां पर भगवान है तो वो वृंदावन है, परंतु उसका आभास फिर भी है, जो 84 कोस जगह है उसके विषय में प्रभुपाद ने एक बात कही है। प्रभुपाद ने कहा है कि जो व्यक्ति कहीं पर भी माला करता है, एक माला करता है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो जब एक माला कहीं पर भी करता है, आप दिल्ली में हैं, बंबई में हैं, लंदन में हैं, अमेरिका में हैं, यूरोप में हैं, अफ्रीका में हैं, कहीं पर भी हो, एक माला करेंगे तो एक माला ही लगेगी आपकी, सीधी बात है ना, एक माला करेंगे एक माला लगेगी। पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि ब्रजे तुष्टेम, जो ब्रज के अंदर, जो वृंदावन के अंदर माला करता है, एक माला 100 माला के बराबर है। एक माला करते हैं आप वृंदावन के अंदर बैठकर, तो एक माला का जो इफेक्ट है वो 100 माला के बराबर है। इसीलिए वृंदावन भागना चाहिए। प्रभुपाद ने सबको बोला है, अपने सब शिष्यों को बोलते थे एटलीस्ट, क्योंकि प्रचार करना है, तभी नई संस्था बनी थी। प्रभुपाद चाहते थे कि लोगों को हरे कृष्ण मूवमेंट के विषय में पता लगे, और प्रभुपाद ने फिर भी उनको कहा कि सब लोग साल में एक बार जरूर वृंदावन जाओ। क्यों? बोलते थे अपनी बैटरी चार्ज करके आओ, बैटरी चार्ज हो जाती है। क्यों? यहां पर भक्ति भक्त है, कहीं पर भी आ जाओ आपको लीला स्मरण होगा, आप घर में बैठोगे तो माला करोगे। देखिए ये जगह है, सब कोई वृंदावन में हर एक प्राणी भक्त है, यहाँ तक कि सुअर है या बंदर है या कुछ भी है, सब साधु लोग हैं, अपराध किए हुए हैं। और कहीं भी आप जाओ 84 कोस में लीला स्मरण होगा, और कार्तिक का महीना आहा उससे भी ज्यादा ऊपर। कार्तिक के महीने के अंदर वृंदावन में एक माला करना 1000 माला के बराबर है। अभी कल बच्चे मिले, कोई लंदन से आया हुआ था, छोटे छोटे बच्चे थे उनके, मैंने उन बच्चों को एक बात बोली, मैंने बोला एक काम करो, बोले वो क्या, मैंने बेटा तुम हर रोज 1000 माला किया करो। अरे ऐसा देख, वो कैसे, मैंने बोला तुम एक माला करो कार्तिक के महीने में 1000 माला के बराबर है। ये कार्तिक का महीना राधा रानी जी ने व्रत किया, और व्रत से प्रसन्न हो गए कृष्ण, कठोर व्रत किया, और इसीलिए कार्तिक के महीने में जो कृष्ण है वो प्रसन्न हो गए, राधा जी ने व्रत किया। अरे हो, जो भी होगा इस व्रत के अंदर तो फ्री में देते हैं भगवान की भक्ति जो है, भगवान और भी देते हैं। देखिए सबको, जब भी कार्तिक शुरू होगा आपको सबको कुछ आभास डिफरेंट हो जाता होगा, है ना, हुआ है कि नहीं, ये बात सच्ची है कि नहीं। आप वृंदावन में है, रोज मंगल आरती पे आते हैं, रोज आरती में आएंगे, गुरु पूजा में आएंगे, शाम को भी आएंगे, प्रसाद भी पाएंगे, परंतु फिर भी जब जब एक दिन कार्तिक का चढ़ता है तो एकदम मूड अलग चेंज हो जाता है। क्यों? ये भगवान की कृपा है, कृष्ण की कृपा है। ये सब लीलाओं का जो स्मरण है, कृष्ण की लीलाओं का स्मरण है कि भगवान को क्या जरूरत पड़ी है, अभी उन्होंने लीला की, राधा दमोदरा आप कार्तिक, इसीलिए सब हमारे को आकर्षित करने के लिए कि आप आ जाओ। अब भगवान ऊपर से वो फेंके रस्सी और हम रस्सी को ना पकड़े तो हम कैसे जाएंगे ऊपर। कोई डूब रहा है ओ कुएं में, आप रस्सी फेंक दो, आप पकड़ना तो पड़ेगा ना भाई उसको। ये जो जीवन है ये बहुत ही टेम्परेरी है, 24 घंटे ये स्मरण करना चाहिए कि जो जीवन में है, जो ये धन यौवन पुत्र प्रियजन, जो हमारे प्रियजन है, प्रिय से प्रिय है, उसकी मृत्यु हो जाएगी, जिसके बगैर हम एक मिनट नहीं जी सकते वो भी मर जाएगा। प्रियजन, धन यौवन सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमारे एक मित्र लंदन में, वो हमारे पिताजी और उनके भी पिताजी सब एक एक जैसे कम्युनिटी होती है ज्वेलर्स की, तो सब इकट्ठे रहते हैं। तो मेरे को अभी पिछले महीने मेरे को बता रहे थे, उनकी प्रॉपर्टी थी जलंधर में, अब अटैचमेंट होती है तो इतने साल क्या नहीं, वहाँ पर नौकर वगैरह रखे हैं, उनको मॉनिटर कर देते हैं, एक और कोई आदमी जाता है उनको भी देखता है, तो कभी अभी 10-20 साल बाद गए, कि 25 साल बाद गए वहाँ पर देखता है, तो आके वो लमेंट करता है, वो उसका पश्चाताप, रो रहा है, वो बोलता है कि वहाँ पर वो है नहीं कुछ भी, वो जानने पहचानने वाले खत्म हो गए हैं, कोई है ही नहीं, वहाँ पर क्या करेंगे जाकर। तो इसी को माया कहते हैं, माया जो नहीं है। जब व्यक्ति है, व्यक्ति को एक और बहुत बड़ी, धन से भी संपत्ति से, अरे धन संपत्ति है, मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े आजकल तो बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े गुरु बन गए, लोगों को बोलते हैं कि तो हमको छोड़ दो, उनके पास समस्याएं हैं, और खुद वो बड़ी बड़ी घड़ी पहनती है, बड़ा बड़ा घर है, बड़ी बड़ी गाड़ी है, वो बेचारा जो जिसको बेचारा वो जो ये रामचरितमानस में लिखा गया है, रामचरितमानस में लिखा गया है कि कलयुग के अंदर जो गुरु लोग होंगे उनके पास बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां होंगी, और जो साधारण लोगों का वो बेचारे रोएगा वो। ये कलयुग का प्रभाव है। पुराने जमाने में जो ऋषि मुनि होते थे, जंगल में रहते थे, कुटिया बना ली, अपना वन में गए, वहां पर रहे, कंदमूल खा लिया और भगवान का नाम जप कर लिया। आजकल वो सिस्टम नहीं है, फॉलोअर चाहिए उनको, जिसके पास जितने ज्यादा फॉलोअर है वो उतना ज्यादा पावरफुल है। वो बोलते हैं महाराज बहुत चढ़ा हुआ है पड़ा, अरे भैया समय आएगा ये सब फॉलोअर मर जाएंगे। कोई भी व्यक्ति होगा, आपको आज कोई आदमी अप्रिशिएट करता है, या आपका कोई कोई आपकी प्रशंसा करता है, आपकी ख्याति बनाता है, आपको फेमस करता है, 1, 2, 4, 5, 10, 50, 100, 1000, 10,000 जितने भी आपके फॉलोअर होंगे, 100 साल के बाद कोई नहीं रहेगा। सब कुछ नश्वर हो जाएगा। इसीलिए भगवान कहते हैं सुख दुख समय कृत लाभ लाभ हो जाए। जो 12वां अध्याय पढ़िए, कोई प्रशंसा क्या करोगे, क्या है, धन भी चला जाएगा, परिवार भी चला जाएगा, ये शरीर भी चला जाएगा। आज कोई 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 अच्छा बोल देगा, बोलेगा अच्छा, अरे किसको, कोई कई बार किसी को भ्रम हो जाए कि शायद मैं बहुत बड़ा कुछ बड़ा प्रोजेक्ट चला रहा हूँ या कुछ बड़ी मैंने बहुत बड़ी कथा कर दी। अरे भैया, हमारे षट गोस्वामी थे, उनके पास ज्ञान था। भक्ति विनोद ठाकुर जी के पास, भक्तिदान सरस्वती ठाकुर के पास, प्रभुपाद जी के पास, नारद मुनि जी के पास, व्यासदेव जी के पास, सुखदेव गोस्वामी, उनके पास भक्ति है। क्या है, दो चार श्लोक सीख लिए और दो श्लोक बोल दिए। हमारे लोगों के पास क्या है, कुछ नहीं है। केवल एक ही बात है, हाँ एक बात जरूर है, जिस व्यक्ति के पास केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, केवल कृष्ण की पूर्ण शरणागति ले ले व्यक्ति, उससे बड़ा और व्यक्ति कोई नहीं, आनंद उससे और बड़ा कोई नहीं, तो बाकी सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसीलिए कोई प्रभु भगवान कृष्ण ने 12वें अध्याय में गीता में कहा है, कई बार आपको लोग, कई लोग आपकी प्रशंसा करेंगे और कई लोग आपकी निंदा करेंगे। और क्या होता है, चार आदमी निंदा कर दें तो हमारा मन दुखी हो जाता है, चार आदमी प्रशंसा कर दें, अरे नहीं 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 प्रभु ऐसा मत बोलो, अरे मैं तो बहुत हम बोलूँ मगर अंदर से लड्डू फूट रहे हैं, अच्छा बहुत, हाँ थोड़ी सी और करो, चार आदमी को और भी बता दो मेरी प्रशंसा, अंदर से लड्डू फूटते हैं। भगवान बोलते भाई ऐसा मत करो, प्रशंसा हो तो अपने अंदर लड्डू मत फूटाओ, और निंदा हो जाए तो समय बहुत कम है जीवन का, मृत्यु बहुत शीघ्र आ जाएगी, शीघ्र मृत्यु आने वाली है, और साथ में ना तो तुम्हारे प्रशंसा जाएगी ना तो निंदा जाएगी, जाएगा तो केवल एक ही काम जाएगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये माला जितना हो वो करो, प्रशंसा है तो छोड़ो, निंदा है तो छोड़ो, धन है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, जो कुछ है जैसी व्यवस्था है, शरीर स्वस्थ है या नहीं स्वस्थ है, कुछ भी है, कोई कहना बहुत आसान है मगर बोलिए करना बहुत मुश्किल है भाई। इसीलिए तो बोलते अभ्यास मात्र, अभ्यास तो करो ना, धीरे धीरे करोगे तो आ जाओगे उस लेवल पर, हर एक व्यक्ति हर एक लेवल पर नहीं आ सकता। अध्यापक क्लास में बोल जाता है, वहां पर 100 बच्चा बैठता है, एक बच्चा स्कॉलरशिप बन जाता है, 50 बच्चे फेल हो जाते हैं, तो सब कुछ अपने आप ऊपर है, यद इच्छा सी तथा कुरु। कृष्ण कहते हैं मैंने तुमको बोल दिया, सर्व धर्मान परित्यज्य मम एकम शरणम व्रज, हम तो अब सर्व पापे मोक्षयामि मां सचे मनमनाभ मद भक्तो मद याची मम नमस्कुरु। केवल भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने सरल तरीका दिया है कृष्ण की प्राप्ति। ब्रह्मा जी, मैं एक छोटा सा बात जरूर बताना चाहता हूं, कृष्ण को देखने के लिए ब्रह्मा जी ने कितनी तपस्या की, जब आप देखोगे भागवत के शुरू में ही एकदम कृष्ण ब्रह्मा जी को तक नहीं मिले। व्यासदेव जी ने जब भक्ति योगेना मनसी सम्यक प्रणति अमले अपिष्टम पुरुषम पूर्ण माया चतुर्द आश्रम, उसका गुरु नारद जी ने बोला तुम लिखो भागवत, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करो, चार वेद 18 पुराण सब कुछ जो भी है, बड़े बड़े ऋषियों ने उपनिषद लिख दिए, 108 उपनिषद लिख दिए, सब किसी का तत् नहीं। अरे भाई, तुम जब तक कृष्ण की लीलाओं का वर्णन नहीं करोगे तब तक जीव का कल्याण नहीं होगा। तो सिर्फ हमको एक ही काम करना है कि कृष्ण की लीलाओं में रमना है, किसी न किसी तरह कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करना है। और लीलाओं का स्मरण कैसे होगा, जब तक आप नाम नहीं लोगे, किसी भी व्यक्ति को आप याद कर लीजिए, एकदम मैं बोलूं रावण तो आपको एकदम याद आ जाता है कि 10 सिरों वाला रावण, याद आता है कि नहीं, आप कंस बोलो एकदम कंस याद आ जाएगा कि मथुरा नरेश कंस, जरासंध बोलो आपको एकदम जरासंध याद आ जाएगा, किसी को बोल दो तुम्हारी सास उसको अपनी सास का सब रूप याद आ जाएगा, बहू बहू का रूप याद आ जाएगा। तो इसी तरह जब हम कृष्ण का नाम जप करते हैं तो हमको कृष्ण की लीलाओं का स्मरण होता है। तो यह कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करना है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते करते प्रभुपाद जी की पुस्तक का वितरण जरूर करना है, ताकि जो भी जीव है वो किसी ना किसी तरह प्रभुपाद जी के साथ जुड़ जाए और उसका भी जीवक सार्थक जीवन सार्थक हो और हमारा भी जीवन सार्थक हो। और प्रसाद पाइए, कृष्ण के नाम का कीर्तन करिए, और है क्या, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 9 बज गए हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो बाद में पूछ लो, या कोई क्विक वन है तो मैं 1 मिनट में दे सकता। हाँ जी, उनको माइक दे देंगे क्या? आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये जो देवभूमि है ये एक पवित्र भूमि है, और कई बार एक मैं छोटी सी और आपको बात बताता हूँ, कई बार मेरे को पूछते हैं कि जो 33 करोड़ देवी देवता है भगवान है, ये केवल आपके भारत में ही क्यों होते हैं, कहीं और क्यों नहीं होते? तो मैं उसका एक छोटा सा जवाब देता हूँ। वहाँ पर जैसे वॉलमार्ट कंपनी है, वहाँ पर इंग्लैंड में या अमेरिका में बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, उनको सेंसबरी टेस्को कहते हैं। तो मैं उनका एक बात पूछी है कि वॉलमार्ट्स या टेस्को या सेंसबरी ने यहीं पर सेंसबरी और टेस्को वॉलमार्ट क्यों खोला है? बोले आप बताइए। मैंने बोला भैया उनके ग्राहक यहाँ पर बहुत है इसलिए खोलते हैं। तो जो 33 करोड़ देवी देवता है वो भी भारत में इसीलिए जन्म लेते हैं क्योंकि उनके ग्राहक यहाँ पर ज्यादा है। तो ये जो भूमि है उनके ग्राहकों की भूमि है। मगर कले दोष निधे राजन हस्ती एक महान गुना, उसके विषय में 5000 साल पहले भागवत के अंदर इसीलिए बता दिया गया है कि कलयुग जो है वो दोषों का पूर्ण समुद्र है। कले दोष निधे राजन समुद्र हस्ती एक महान गुना। आज क्या हो गया, कलयुग के प्रभाव में जो कलयुग गौ माता को मारने से ही हुआ, बैल को मारने से हुआ शुरुआत उसकी, और कली के जो 4 पाप के खंभे हैं जो जिसके अंदर कली रहता है वो आपको पता है, दूतम पानम से सूनम यत्र धर्म से चतुर्विदा। तो वो जो 4 पाप के खंभे हैं वो पहले जब युधिष्ठिर महाराज थे और उसके बाद सॉरी क्या नाम उनका परीक्षित महाराज, तब वहां पर ये चीजें 4 चीजें नहीं होती थी वो समय। मगर एकदम तुरंत बढ़ते 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 आज लोग जो भी गौ हत्या कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, ये कलयुग का इफेक्ट है। और ये कलयुग का इफेक्ट वहीं पर, भूमि तो पवित्र है, पवित्र ही रहेगी, मगर जो ऋषि मुनि हैं, जो भक्त लोग हैं, वैष्णव लोग हैं, उनके कारण ही ये बची हुई है, उनके कारण ही बचेगा ये संस्कृति। तो प्रभुपाद जी अमेरिका गए इसीलिए, कारण यही था कि वो बोलते थे कि दुनिया को पता लगे, क्योंकि भारत के लोग भूल रहे हैं उस संस्कृति को, वो नॉन वेज ये सब कुछ करने लग गए हैं। तो प्रभुपाद इसी उद्देश्य से झांसी में जब उन्होंने 1956 में लीग ऑफ डिवोटीज खोली थी, वहां पर लोग चाय के लिए या लोग, तभी तो चाय शुरू हुई थी, चाय और सिगरेट। प्रभुपाद जी ने सोचा कि यहाँ के इंडियन लोग जो है वो विदेशी संस्कृति से प्रभावित हो गए हैं, तो मैं विदेश में जाकर लोगों को बताऊं कि कृष्ण की शरणागति ही आपका उद्धार है और कोई नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने वो काम किया। आज की डेट में अच्छा कि आपने मेरे को यह प्रश्न पूछ लिया, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा आपने, मैं बहुत आभारी हूं आपका। क्योंकि आभारी इसलिए हूं कि जो संसार में मलेच्छ देश में, वहां तो लोगों को ज्ञान होना चाहिए कि कृष्ण कौन है, कि कृष्ण की भक्ति करे, कृष्ण का नाम, आज भारत को उससे भी ज्यादा जरूरत हो गई है। भारत में जो लोग हैं, यहाँ के जो भी ये कोई राजनीति भी है, कुछ भी, सब कुछ, जो भी कुछ चल रहा है। 1400 साल से मुगल आए, उन्होंने भारत को तोड़ा, ब्राह्मणों की हत्या की, गो ब्राह्मण हत्या करे अपि दुराचार, चेतना महाप्रभु ने स्पष्ट कहा है। हरिदास, कली काले यवना अपार, गो ब्राह्मण हत्या करे अपि दुराचार। कलयुग के अंदर यवन लोग होंगे और बहुत यवन लोग हो जाएंगे, उनका काम क्या होगा? गौ की हत्या, ब्राह्मण की हत्या, अपि दुराचार, बहुत दुराचारी होंगे। चेतना महाप्रभु, अभी तो आप आराम से नाम जप कर रहे हो, हरे, कौन सी माता जी ने पूछा था प्रश्न यहाँ पर? अच्छा, आपने, अभी तो आप आराम से बैठे नाम जप कर रहे थे, जब चेतना महाप्रभु के समय में तो वहां पर तो नाम जप भी नहीं होता था, तभी नाम जप करने के लिए कई कई बाधाएं आती थी। एक जगह से दूसरी जगह पर जब हमारे भक्त ट्रेवल करते थे तो वहां पर यवन लोग उनको अलग अलग तरह से उनको मारते थे, टैक्स लिए जाते थे। आप देखिए ना, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी को जब सनातन गोस्वामी कैसे निकले और जेल से और सब कुछ, वहां बहुत बहुत कष्ट से है। ये तो आपको आनंद में बैठे, आप बैठे आराम से देखो चल रहा है, कहीं पर भी जाओ अभी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अब जो भारत की स्थिति है उसके लिए हमारा सबका दायित्व है। आप एक एक व्यक्ति को, जब आप वृंदावन में बैठे हैं नाम जप करते, कभी आपको समय मिले बाहर जाने का, तुरंत उसको किसी ने, भले एक आदमी को कृष्ण के बारे में विषय में बताओ, प्रभुपाद जी की पुस्तक का वितरण करो। इसलिए प्रभुपाद जी की पुस्तक का जितना वितरण करोगे उतने भक्त बनेंगे, जितने भक्त बनेंगे उससे सब समस्याएं नॉन वेज की, एल्कोहल की, ड्रग्स की, ये सब खत्म हो जाएंगे। समस्याओं का हल ही एक है कि दुनिया कृष्ण में नहीं है, संसार कृष्ण में नहीं है, भारत कृष्ण में नहीं है अभी, और उसको कृष्ण में बनाने के लिए आपका एक ही उद्धार है। कले दोष निधे राजन हस्ती, एक एक ही गुण है, बाकी तो सब अपगुण है। और वो गुण क्या है? कीतना देव कृष्णस्य, और ऊपर से क्या बोल दिया? इति शोष्टकम नाम नाम कलिकल्मषनाशनम नाते पत्रोपाय सर्वदेशु दृश्यते। सब वेदों में, शास्त्रों में, कोई भी उपनिषद में, किसी में भी, कोई तपस्वी, कोई गुरु, कोई देवी देवता, स्वयं भगवान, इससे ऊपर कोई फॉर्मूला है ही नहीं। और फॉर्मूला क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।